पृष्ठ संख्या 62, अध्याय 8, नाना पानसे घराना। कुदव सिंह महाराज ने अपनी कला साधना, वादन वैशिष्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व और विशाल परंपरा के द्वारा पखावज के क्षेत्र में ऐसा प्रभुत्व जमा लिया था कि दूसरे 100 साल पर्यंत पखावज के क्षेत्र में किसी दूसरे घराने की उत्पत्ति की कल्पना भी असंभव सी प्रतीत होती थी। परंतु ईश्वर की गति न्यारी है। उनके जीवन काल में ही एक अलौकिक प्रतिभा का कला की क्षितिज पर उदय हो चुका था, जिसके चौमुखी व्यक्तित्व ने आगे चलकर कला संसार को परम उज्ज्वलित किया तथा एक नवीन घराने की भेंट से उसे नवीन ज्योति दी। उस कला पुंज का नाम था नाना पानसे। तत्कालीन विद्वानों के मतानुसार उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक नाना पानसे जैसा तालमर्मज्ञ, मधुर वादक एवं ताल गणितज्ञ कोई दूसरा नहीं था। नाना पानसे को ताल शास्त्र का नायक कहा जाता था। कुदव सिंह जी के कारण उत्तर भारत में तो पखावज की प्रसिद्धि विपुल मात्रा में थी ही, परंतु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में पखावज के प्रचार एवं प्रसार का मुख्य श्रेय नाना पानसे को ही है। कुदव सिंह महाराज के समकालीन बाबू जोत सिंह नामक एक उत्कृष्ट एवं संत प्रकृति के मृदंगाचार्य हुए, वे ही नाना पानसे के गुरु थे। नाना जैसा प्रतिभाशाली शिष्य उत्पन्न करके उन्होंने संगीत जगत को भी जो देन दी है वह सचमुच अद्वितीय थी। बाबू जोत सिंह के गुरु के विषय में दो मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार वे लाला भवानी दीन के शिष्य एवं कुदव सिंह के गुरु भाई थे। दूसरे मत के अनुसार उनका संबंध लाला केवल किशन की परंपरा से है। पंडित छेदाराम कृत पोथी में बाबू जोत सिंह को भवानीदास का पौत्र और टीकाराम का पुत्र बतलाया है। जो भी हो, किंतु बाबू जोत सिंह एक उत्कृष्ट पखावजी थे तथा लाला भवानी दीन अथवा भवानीदास को की परंपरा से ही संबंधित थे। दोनों मतों के लोगों ने उनका संबंध भवानी दीन या भवानी दास से ही जोड़ा है। कहा जाता है कि बाबू जोत सिंह प्रदर्शन और प्रसिद्धि से दूर रहकर अपनी एकांत साधना में निमग्न रहा करते थे तथा भक्ति भाव से नित्य वीणा पाड़ी देवी सरस्वती के चरणों में अपना मृदंग सुनाया करते थे। यद्यपि ऐसा उल्लेख मिलता है कि सन 1848 ईस्वी में लखनऊ के वाजिद अली शाह के दरबार में कुदव सिंह के साथ बाबूजी की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें विजय प्राप्त कर कुदव सिंह ने 1000 मुद्रा का पुरस्कार जीता था। पृष्ठ संख्या 63। तथापि यह सिद्ध होता है कि बाबू जोत सिंह कुदव सिंह के समकालीन तथा श्रेष्ठ विद्वान थे। स्वयं कुदव सिंह ने भी इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता को जीतने के पश्चात भरे दरबार में बाबूजी की विद्वता की प्रशंसा करके उनका आदर किया था। ऐसा उल्लेख छेदाराम कृत पोथी में उपलब्ध है, परंतु उनके अनुसार यह प्रतियोगिता दतिया दरबार में हुई थी। कहते हैं कि कुदव सिंह ने अपनी सिद्धि के बल पर मृदंग को हवा में उछालकर ऊपर धा बजने के कारण प्रतियोगिता जीती थी। यूं विद्वता और ज्ञान में दोनों बराबर ही थे। संभव है इस सार्वजनिक पराजय के कारण बाबू जोत सिंह को वैराग्य उत्पन्न हो गया हो और इस क्षेत्र से संन्यास लेकर उन्होंने केवल एकांत साधना में निमग्न रहना ही अच्छा समझा हो। ऐसे साधु प्रकृति के साधक के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य नाना पानसे को मिला था। उनके अतिरिक्त बाबूजी के दूसरे शिष्यों में विंध्य प्रदेश के चाखेर स्टेट के एक सूरदास तथा मथुरा के जट्टा राम परंपरा के वंशज पंडित कुंदन राम का नाम लिया जाता है। पंडित कुंदन राम के पुत्र गंगा राम तथा उनके शिष्य मक्खनलाल मथुरा और मुंशी मन्नू जी काशी ने इस क्षेत्र में काफ़ी कीर्ति अर्जित की। मक्खनलाल और मन्नू जी कुदऊ सिंह तथा नाना पानसे दोनों परंपराओं से संबंधित थे। संगीत दक्षिण महाराष्ट्र के उत्साही होनहार बालक नाना पानसे में बचपन से ही शुद्ध संगीत के संस्कार विद्यमान थे। नाना का जन्म महाराष्ट्र के बाई के पास बावधन में हुआ था। बाल्यावस्था में ही पिता से पखावत सीखकर वे मंदिरों में भजन कीर्तन की सुंदर संगति किया करते थे। पिता के उपरांत नाना पानसे को पुणे के दरबारी कलाकार मन्यवा जी को डितकर से भी सीखने का सौभाग्य मिला। पानसे जी के बाज में जो सारणी परने धारापरण सुनने को मिलती हैं वह कोडितकर घराने का ही प्रभाव है। तत्पश्चात उन्हें वाई के चौंडे बुआ तथा मार्तंड बुआ से भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। सौभाग्य से किशोरावस्था में नाना पानसे को अपने पिता के साथ काशी जाने का अवसर मिला। काशी के मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ उनकी मृदंग संगति सुनकर वहाँ के लोग मुग्ध हो गए थे। उन दिनों काशी नगरी में बाबू जोत सिंह रहा करते थे। लोगों के मुख से उस महान संत की अपार विद्या का वर्णन सुनकर नाना अपने को रोक न सके और एक दिन उनसे मिलने उनके घर पहुँच गए। उस समय नित्य नियमानुसार बाबूजी लय में लीन होकर माँ भगवती के चरणों में अपनी साधना का अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। इस भक्त कलाविद का अनोखा वादन सुनकर नाना दंग रह गए। वे आत्मविभोर होकर विद्या प्राप्ति की आकांक्षा से उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु ने शिष्य की भक्ति और प्रतिभा को पहचान लिया और इस प्रकार नाना की परंपरागत शिक्षा प्रारंभ हुई। गुरु चरणों में 12 वर्षों तक विद्या ग्रहण करके तथा पखावज वादन में पूर्ण दक्षता प्राप्त करके नाना पानसे काशी से इंदौर आए। पृष्ठ संख्या 64। श्री गोविंद राव बुरहानपुरकर ने एक स्थान पर नाना पानसे के गुरुओं में प्रयाग उत्तर प्रदेश के माधव स्वामी का भी निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। वाई के में पलने के बाद तथा पिता से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नाना पानसे ने पुणे के मन्यावा कोडितकर तथा चौंडे बुआ मार्तंड बुआ से भी शिक्षा ग्रहण की। बाद में वे बाबू जोत सिंह के पास काशी चले गए। वहां 12 साल अभ्यास करने के बाद बाबू जोत सिंह जी ने उनको प्रयाग के परम संत योगी राज माधव स्वामी के पास भेज दिया था। योगी राज माधव स्वामी उच्च कोटि के मृदंगाचार्य थे। उनके शिष्यत्व में नाना 12 वर्ष रहे। अंत में शिक्षण पूर्ण करने के बाद माधव स्वामी ने नाना पानसे को अपनी कीमती पुस्तक अपना मृदंग तथा आशीर्वाद देकर स्वयं जल समाधि ले ली। गुरु की जल समाधि के बाद नाना प्रयाग में नहीं रुके। वहां से वे इंदौर आए और उन्हें इंदौर के राज दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। यद्यपि नाना जी के शिष्यों में गुरु माधव स्वामी के लिए काफी मतभेद है तथापि इंदौर की श्रीमती आशा लता बोकिल ने अपने एक लेख में इस विधान का समर्थन किया है। जैसे कुदव सिंह महाराज के लिए अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही नाना पांसी के लिए भी अनेक आख्यायिकाएं सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि नाना पांसी का असली नाम नारायण थोरपे था। नाना बचपन में पांसी नाम से वाई के एक सुप्रसिद्ध कीर्तनकार के साथ संगति किया करते थे। उनकी संगति इतनी सुंदर हुआ करती थी कि लोग विशेषतः उनका पखावा सुनने के लिए कीर्तन में आया करते थे। तब से लोगों को पांसे का पखावा सुनने जा रहे हैं ऐसा बोलने की आदत सी पड़ गई थी, अतः उनका नाम थोरपे से पांसे पड़ गया। इस कथन की सत्यता को खोजने पर इनके शिष्य परिवार के एक सदस्य ने इस पर शंका व्यक्त की है। एक मत यह भी है प्राप्त होता है कि उनके 500 शिष्य थे। मराठी भाषा में 500 को पांसी कहा जाता है, अतः वे पांसी कहलाए। इंदौर में राजाश्रय प्राप्त होने के बाद पांसी जी ने अपनी प्रज्ञा प्रतिभा एवं मौलिक सृजन शक्ति के अनुसार गुरुमुखी विद्या में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया जिससे उनको नवीन दृष्टि मिली। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने गणित शास्त्र की दृष्टि से पर्णों का नवीनीकरण किया, नवीन ठेकों का आविष्कार किया, अनेक तालों में नवीन बंदिशों की रचनाएं की तथा शिक्षा को सरल बनाने के हेतु मात्राबद्ध पद्धति का निर्माण करके उंगलियों पर गिनने की रीति को उन्होंने शास्त्राधार दिया। भारतीय ताल विद्या में उनकी यह अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। नाना पांसे जी बड़े ही कोमल, सरल, विनम्र, विशाल हृदयी एवं अत्यंत निराभिमानी व्यक्ति थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी कलाकार का अपमान नहीं किया। वे सभी छोटे बड़े कलाकार की इज्जत करते थे तथा उनकी कला का यथोचित सम्मान किया करते थे। कदाचित यही कारण होगा कि किसी कलाकार के साथ उनकी कोई प्रतियोगिता हुई थी या किसी कलाकार को उन्होंने हराया था, ऐसा कोई उल्लेख या किंवदंती सुनने को नहीं मिलती। कहते हैं कि ऐसा ताल पारंगत विनयी व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं। पृष्ठ संख्या 65। इंदौर नरेश तुकोजी राव होलकर के साथ नाना पांसे का अत्यंत स्नेहपूर्ण संबंध था। तुकोजी राव उन्हें बहुत चाहते थे। एक बार ग्वालियर नरेश जिया जी राव इंदौर पधारे। कला मर्मज्ञ जियाजी राव ने इंदौर दरबार में जब नाना पांसे का पखावज वादन सुना तो वे मंत्रमुग्ध से रह गए। उन्होंने इंदौर नरेश से नाना पांसे की मांग की। तुकोजी राव अपने मित्र नरेश को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे, अतः साथ ही नाना पांसे को भेज देना भी उनके लिए कठिन था। अतः उन्होंने नाना पांसे पर इसका निर्णय छोड़ दिया। यद्यपि ग्वालियर नरेश के पास वेतन की दृष्टि से अच्छा खासा आर्थिक प्रलोभन तथा पांसे जी ने इंदौर छोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कम वेतन में ही वहां रहना उचित समझा। इस तरह नाना पांसे जी जीवन के अंत तक इंदौर में ही रहे। इंदौर के कृष्णपुरा में जहां वे रहा करते थे उनके नाम से आज भी पांसे गली है। अद्वितीय कलाकार होने के साथ साथ पांसे जी एक उच्च कोटि के शिक्षक भी थे। मुक्त मन तथा विशाल हृदय से उन्होंने सैकड़ों शिष्यों को शिक्षा दी थी। कहते हैं कि उनके 500 शिष्य थे। संभवतः यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण हो, परंतु यह सत्य है कि उत्तर भारत में बाद के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण भारत में पखावज का जो प्रचार और प्रसार हुआ है, उसके पीछे उनका तथा उनकी शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी शिष्य परंपरा बड़ी विशाल है, परंतु उनके शिष्यों में उनके सुपुत्र बलवंत राव पानसे, नाती शंकर भैया पानसे, पुणे पंडित सखाराम बुआ आगले इंदौर, पंडित वामन राव चंदौड़कर हैदराबाद, पंडित बलवंत राव वैद जमखड़ी, पंडित शंकर राव अलकूटकर मुंबई, महाराजा भाऊ साहब सतारा, पंडित गोविंद राव राज वैद इंदौर, पंडित बलवंत राव बाटवे आदि के नाम लिए जाते हैं। उनके प्रशिष्यों में पंडित अंबादास पंत आगले इंदौर, पंडित गोविंद राव बुरहानपुरकर बुरहानपुर, पंडित गुरुदेव पटवर्धन, पंडित बाबू राव गोखले मुंबई, राजवैद्य बंधु चंद्रकांत वीरेंद्र कुमार केशव राव तथा शिव नारायण इंदौर, पंडित सखाराम मृदंगाचार्य लखनऊ, पंडित बलिराम पंत आगले नागपुर, पंडित नारायण राव कोली मुंबई, पंडित शंकर भैया तथा चुन्नीलाल पवार इंदौर, रंगनाथ राव देगलूरकर महाराष्ट्र, मार्तंड बुआ हैदराबाद, शंकर बापू शिंदे आपेगाँवकर औरंगाबाद, राजा छत्रपति सिंह जूदेव बीजना, श्री कृष्ण दास बनातवाला बुरहानपुर, कोल बाजी पिंपल धर नागपुर, अर्जन सेजवाल मुंबई, विनायक राव घनकरेकर पेन, गोस्वामी कल्याण राय गोकुल लोत्सव तथा देवकी नंदन महाराज नाथ द्वारा इस इंदौर एवं इंदौर इत्यादि कलाकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। पखावज के साथ साथ नाना पांसे को तबला वादन तथा कथक नृत्य की कला भी हस्तगत थी। पखावज के आधार पर तबले में अनेक बंदिशों की रचना करके उन्होंने एक नवीन बाज का आविष्कार किया था, जो नाना पांसे के तबला बाज के नाम से आज भी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अपने तबला वादन एवं नृत्य में भी अनेक शिष्य तैयार किए। पृष्ठ संख्या 66। नाना पानसे ने अपने सुपुत्र बलवंत राव पानसे को उत्कृष्ट कलाकार तैयार किया, किंतु दुर्भाग्य से वे युवावस्था में ही चल बसे। नाना पानसे पुत्र शोक से व्याकुल हो उठे। पुत्र निधन के आघात से वे अत्यंत दुखी एवं अस्वस्थ रहने लगे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संसार त्याग कर चल बसे। खेद है कि हमें उनकी मृत्यु तिथि प्राप्त नहीं हो सकी। नाना पानसे के अनेक शिष्यों ने तबला पखावज पर पुस्तकें लिखी, जिनमें मोरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ के प्राध्यापक पंडित सखाराम मृदंगाचार्य की मृदंग तबला शिक्षा तथा सुप्रसिद्ध मृदंग केसरी, पंडित गोविंद राव देवराव बुरहानपुरकर की मृदंग तबला वादन सुबोध 3 भाग तथा भारतीय ताल मंजरी प्रमुख हैं। नाना पानसे घराने की वादन विशेषता। नाना पानसे जी अत्यंत निराभिमानी एवं कोमल हृदय व्यक्ति थे। छोटे बड़े सभी कलाकारों के सम्मान की रक्षा हेतु उन्होंने सुदर्शन नामक एक नवीन ठेके का निर्माण किया था। किसी कलाकार की क्लिष्ट गायकी में तबलिए को यदि सम या ताल समझ में न आए तो अपमान से बचने के लिए उन दिनों सुदर्शन ठेका तबलिए के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता था। उनका बाज सरल एवं मुलायम था, अतिशय लंबी लंबी पढ़ने अत्यंत कठिन बोलों का प्रयोग उनके बाज में नहीं था। कुदऊ सिंह घराने के धड़न तड़न धीलांग आदि क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर धुमकिट किटतक धड़नग तगन गदिगन धीरधीर किटतक तकतक तिरिकिटतक आदि सरल शब्दों का प्रयोग उनकी बंदिशों में देखने को मिलता है। वैसे तो बोल गठन में प्रत्येक शब्दों का समावेश उनके वहाँ भी देखने को मिलता है, किंतु दौड़ने वाले शब्दों को उनकी शैली में विशेष महत्व दिया जाता था। उनके रेले सरल होते हुए भी मधुरता की दृष्टि से बहुत खूबसूरत हैं और बिना किसी कष्ट के द्रुत लय में भागते हैं। कुदऊ सिंह का बाज गंभीर ओजपूर्ण और जोशीला बाज था, जबकि पांसे जी की बाज जी का बाज मुलायम मधुर एवं सरल बाज था। पांसे घराने की विशेषता ताल का बंध माना जाता है। बोलों को प्रथम हाथ से ताल देकर लय में साधा जाता है। जब तक बोल लय में न बैठें, शिष्य साज को छू नहीं सकता। गणित शास्त्र का स्थान उनकी पर्णों में अग्रण्य है। उनके बाज में हिसाब की बातें ऐसी सुंदर रीति से सजी रहती हैं कि वादक की विद्वता से लोग मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। उनकी बंदिशों में तीन तीन मात्राओं के हिसाब या तीन तीन शब्दों के खंड विशेषतः देखने को मिलते हैं। आज देश में जो इन्हें गिने पखावज वादक बचे हैं, उनमें कुदऊ सिंह और नाना पांसे घरानों का योगदान ही अधिकांश दिखलाई देता है। नाना पांसे की एक और विशेषता और यह थी कि वे जितने अच्छे पखावज वादक थे, उतने ही गुणी तबला वादक और नृत्यकार भी थे। युग की पुकार सुनकर उन्होंने पखावज के साथ तबले पर भी अपनी दृष्टि स्थिर की थी। पखावज के बोलों के आधार पर चाटी को प्राधान्य देकर उन्होंने अपने एक विशिष्ट तबला बाज का आविष्कार किया था, जो आज भी दिल्ली, अजराना, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस एवं पखावज जैसे सर्वमान्य प्रचलित तबले के घरानों के बाजों से अलग है। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से कलाकार हैं, पृष्ठ संख्या 67, जो नाना पांसे घराने का तबला बजाते हैं। हैदराबाद दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित वामन राव चंदौडकर उन्हीं के शिष्यों में से एक थे। पंडित वामन राव चंदौडकर को नाना पांसे जी ने मुख्यतः तबला ही सिखाया था। यहाँ पर नाना पांसे जी की एक छोटी सी स्वरचित पखावज परण तथा तबले की एक रचना उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। पखावज की परण उनके इंदौर निवासी शिष्य स्वर्गीय गोविंद भाऊ राजवैद्य के सुपुत्रों से प्राप्त हुई है तथा तबले की रचना इंदौर के ही श्री शरद खरगोनकर से मिली है। लेखिका दोनों की ऋणी है।